Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank you. इदं यः भागवतं श्रीमद्भागवत नाम नामवाला पुराणं वैदिक अनुपूरक वैदिक अनुपूरक पुराण ब्रह्म संहितं वेदों के सार स्वरूप स्वीकृत अधीतवान अध्ययन किया द्वापर आदो द्वापर युग के अंत में पितुः अपने पिता से द्वैपायना द्वैपायन व्यास देव से अहम मैंने स्वयं अनुवाद अवतार श्री रघुपाल द्वारा रचित
द्वापर युग के अंत में मैंने श्रीमद् भागवत नाम के
द्वापर युग के अंत में मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का जो समस्त वेदों के तुल्य है अध्ययन अपने एकाश्री द्वैपायन व्यास देव से किया। तात्पर्य श्री सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की कि सर्वोच्च आध्यात्मवादी ही जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है उनके ही निजी उदाहरण से पुष्टि होती है। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों में उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई। वे अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने महान पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत या किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य को अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं पढ़ा जा सकता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर के विद्वान प्राचार्यों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवद विज्ञान है का स्ना जो भगवद विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है श्री व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों पर बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जन्मजात मुक्तात्मा थे किंतु उन्हें भी अपने महान पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना पड़ा जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विद्वान ब्राह्मण को निजी भागवत से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया था। श्रीमद् भागवत परम पुरुष के द्वितीय नाम रूप गुणों लीलाओं पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है और भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन हुआ। चूंकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती है फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है जिनका संबंध कृष्ण से है। यह ब्रह्म संहिता कहलाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण का वाणी प्रतिनिधि है। जिस तरह की भगवत गीता भगवान का वाणी अवतार है क्योंकि इसका प्रवचन भगवान से ही हुआ और श्रीमद् भागवत भगवान का वाणी अवतार है क्योंकि इसका प्रवचन भगवान के ही अवतार द्वारा भगवान के ही कार्यकलापों के विषय में हुआ। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, यह वल्कि कल्प वृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शुद्ध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का प्राकृतिक भाष्य है। व्यास देव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए थे, अतएव इस प्रसंग में द्वापर आदव का अर्थ होगा कलयुग के शुभारंभ से ठीक पहले। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने की भांति है। यद्यपि वृक्ष का आदि उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी हिस्सा ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। ओम अज्ञान निरंभस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर देव के अतिशय परार्जित पाद पद्मों में तत्परे पर श्री ललिता देवी श्री विशाखा देवी प्रकृति अष्ट सखी वर्ग एवं श्री रूप मंजरी श्री रति मंजरी प्रकृति पाल्य दासी किंकुनिगम समेत कोटि कोटि बार दैन्यतामयी एवं आकृतिमयी प्रणतियों को किंवा विज्ञप्तियों को संपन्न करने के साहचर्य रूपी कार्य में कलयुग की प्रथम संध्या में इह जगती तल भूमि तल धरातल वेदिनी पृथ्वी तल पर स्वकीया अपार महाकरुणा वरुणा ललिता के फल स्वरूप किंवा परिणाम स्वरूप श्री शची सोनू के रूप में जगत जीवों को कृष्ण नाम एवं कृष्ण प्रेममय उन्नत उज्ज्वल रस की महावन्या में आप्लावित करने के लिए अवतीर्ण होने वाले श्री अभिन्न व्रजेन्द्र नंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भी अतिशय सुललित पादांगज द्वय में तत्परिकर श्री राम वृंदावन स्थित श्री रूप सनातन प्रभृति षड गोस्वामी पादों सहित नमस्कार करने के साथ ही साथ उपरोक्त उसी श्री कृष्ण भावना सुधारूपी अलकनंदा किंवा भागीरथी मंदाकिनी के अर्वाचीन काल संप्रत वेला आधुनिक समय में पुनः विस्तारित प्रवर्धन वितरण प्रचारण प्रसारण प्रभृति करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाल के भी वंदनीय चरणामृतों में प्रणत होने के अनंतर वर्तमान वैष्णव श्रोता समुदाय का भी यथायोग्य तारतम्यादि भेद से अभिनंदन स्वागत करते हुए आज के इस महान प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में श्रीमद् भागवत रस सुधा आस्वादन की ओर हम क्रमशः अग्रसर होते हैं, प्रस्थान होते हैं, परिभावित होते हैं। श्रीमद् भागवत के
द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय के इस अष्टम श्लोक में श्रीमद् भागवत के अनुशीलन का जो प्रकार है, श्रीमद् भागवत के सेवन की जो विधि है, उस विधि का दिग्दर्शन अथवा निदर्शन श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कराया गया। श्रीमद् भागवत एक औषधि है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में श्री परीक्षित महाराज ने कहा, निवृत्त तर्षैरुपगीयमान भवौषधाच्छ्रुत्र मनोभिराम क उत्तम श्लोक विना पशुघ्न पुमान विरज्य कौत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरज्य कविना पशुघ्न। इस श्लोक में श्री परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से कहा कि जिन आत्माराम मुनियों की जो सांसारिक तृष्णा है, पुनः सांसारिक प्रापंचिक तृष्णा भी द्विधा विभक्त है, एक पार्थिव तृष्णा के रूप में और अन्य स्वर्गीय तृष्णा के रूप में। पृथ्वी के सुखभोगों की अभिलाषा पार्थिव तृष्णा और स्वर्ग के सुखभोगों की कामना एक स्वर्गीय तृष्णा। इस द्विधा विभक्त सांसारिक तृष्णा से जो उपरम हो चुके हैं, जो ऊपर उठ चुके हैं, जो निवृत्त हो चुके हैं, वैसे ब्रह्मानंद को प्राप्त, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा शुद्ध की नकांक्षा की जो आत्माराम अप्रकाम मुनिगण है, जो कि स्वरूप के आनंद में ही सर्वदा स्थित रह रहे हैं, उन मुनियों के द्वारा भी, उन परमहंसों के, उन अमलात्माओं के द्वारा भी इस श्रीमद् भागवत का सम्यक सेवन किया जाता है। निवृत्त तर्षै उपगीयमान भवौ सदा श्रुत्र मनोभिराम। और यह श्रीमद् भागवतम जो संसारी प्राणी है, जो भी मुक्त नहीं हुए हैं, परंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि जो तापत्रय है इत्यादि संसार की अवस्थाओं में जो ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, उन सांसारिक बद्ध जीवात्माओं के लिए भी यह श्रीमद् भागवत भव अर्थात जो बारंबार होना है संसार में, बारंबार जो जन्म लेना है और मृत्यु ग्रहण करना है, इस भव महादावागे से अथवा इस भव सागर से उबरने के लिए एकमात्र, अथवा ये जो भव नाम की व्याधि है, संसार नाम का जो रोग लग चुका है जीवात्माओं को, इस भव नाम की व्याधि से करने का एकमात्र उपाय, एकमात्र औषधि, एकमात्र साधन, एकमात्र अवलंबन श्रीमद् भागवत है। इसलिए भवौषधा भव की औषधि है, भव तो संसार की जो रोग है उसकी यह औषधि है शुक्र मनोभिराम। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत औषधि ही है, राम बाण औषध है इस संसार से करने के लिए, इस संसार से उद्धार के लिए, परित्राण के लिए रामबाण औषध है। औषध होने के कारण जिस प्रकार से किसी भी औषधि का जो सेवन है वह वैद्य के द्वारा निर्दिष्ट जो पथ्य होता है, उस पथ्य के नियम में बने रहने से और एक निश्चित अनुपात में उस औषधि को ग्रहण करने से जैसे लाभ होता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत रूपी जो भव महादावाग्नि की, भव सागर की, भव व्याधि की जो औषधि है, उसका भी सेवन एक निश्चित प्रकार से, एक निश्चित अनुपान में और एक निश्चित प्रणाली और पद्धति और रीति का अनुसरण करके ही हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी औषधि को सेवन करने की जो विधि है अथवा जो परिपाटी है, अथवा जो शैली है, अथवा जो प्रणाली है, वह क्या है, उस प्रणाली का निदर्शन यह श्लोक करता है। और इस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में जिन महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर अवलोक प्रदान किया है, आलोक प्रदान किया है, प्रकाश प्रदान किया है, उन कई एक महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर भी इस सत्र के प्रारंभिक भाग में विवेचना होगी। और जो सत्र का अंतिम भाग है उसमें पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं वैष्णव संप्रदायों के, उनकी जो टीका है इस श्लोक के ऊपर, उनका भी विवेचन किया जाएगा। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकाशित करते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है उसको अपनी बुद्धि के बल से नहीं पढ़ा जा सकता। अर्थात जो व्यक्ति का जो व्यक्ति जो प्राणी जो जीव भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा एवं करना पाया इन दोष चतुष्टयों से युक्त है ऐसे किसी मानव के द्वारा किसी सांसारिक जीव के द्वारा अपनी मति के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी जो विवेक शक्ति है उसके आधार पर अथवा अपनी जो कुशाग्र तीक्ष्ण बुद्धि है तथा कथित रूप से उसके आधार पर इस श्रीमद् भागवत को नहीं समझा जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस श्लोक में प्रकाशित हुआ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उन लीलाओं में भी हम इस तथ्य का संदर्भ देख सकते हैं, इस तथ्य की पुष्टि अनेक प्रसंगों में हुई देख सकते हैं। श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है मध्य लीला में कि महाचिंत्य भागवत सर्वशास्त्रेताय इहाना भुजीये विद्या तप प्रतिष्ठाय। श्रीमद् भागवत का जो तार्किक रूप से अवेद्यत्व है उस अवेद्यत्व को यहां पर बता रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत है वह महाचिंत्य है। अचिंत्य का तात्पर्य है जो सांसारिक नियमों से परे हो। अचिंत्य की परिभाषा श्री महाभारत में भगवान वेद व्यास देते हैं कि अचिंत्य खरये भाव नताम स्तर्केण योजये प्रकृतिभ्यः परम यच्च तद अचिंत्यस्य लक्षणम्। जो अचिंत्य भाव है जो घटनाएं जो नाम जो रूप जो गुण जो लीलाएं जो धाम जो स्थान जो परिकर पार्षदगण और भगवान के जितने भी रूप ये समस्त अचिंत्य है और ये जितने भी अचिंत्य पदार्थ हैं अथवा वस्तुएं हैं अथवा भाव हैं इन अचिंत्य भावों को तर्क के द्वारा नहीं ग्रहण किया जा सकता। तर्क के द्वारा जो अनुमान है जो अनुमितिकरण है अनुमितिकरण के द्वारा अचिंत्य वस्तुओं को अचिंत्य पदार्थ के स्वभाव को उनके स्वरूप को उनकी गतिविधि को और किस प्रकार से वो कार्यरत है उनको नहीं जाना जा सकता। अतएव जो वेदांत सूत्र है ब्रह्म सूत्र है वेदांत दर्शन के भी प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में कहा गया है कि तर्का प्रतिष्ठान तर्क के द्वारा ब्रह्म की प्रतिष्ठा कदापि नहीं हो सकती। यानी कि ब्रह्म के अस्तित्व को ईश्वर के परमात्मा के भगवान के अस्तित्व को यदि सिद्ध करना हो तो तर्क के द्वारा नहीं हो सकता। और यद्यपि जो नैयायिक है षड दर्शन है सांख्य मीमांसा योग वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वेदांत इस प्रकार से जो षड दर्शन है विभिन्न ऋषियों के द्वारा प्रणीत और रचित इन षड दर्शनों में से जो न्याय दर्शन है महर्षि गौतम के द्वारा रचित इस न्याय दर्शन के अनुयायी जो नैयायिक लोग हैं जो कि तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ कला में पारंगत होते हैं इन नैयायिकों में अग्रगणी ऐतिहासिक जो उदयनाचार्य है इन उदयनाचार्य ने अपने ग्रंथ में अनेक तर्क और वितर्कों के द्वारा यह सिद्ध करके प्रमाणित किया है कि ईश्वर का अस्तित्व है। बौद्ध और जैन मतावलंबियों का यह मत था कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है ईश्वर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। परंतु जो नैयायिक हुए भारत के उदयनाचार्य जैसे उन्होंने अपने ग्रंथों में सिद्ध कर दिया तर्कों के आधार पर और ऐसे तर्कों के आधार पर जो वेदों के द्वारा पुष्टि को प्राप्त नहीं थे जो किसी शास्त्र के आधार पर नहीं थे क्योंकि जो बौद्ध और जैन थे वे वेद आदि शास्त्रों को मानने वाले ही नहीं थे इसलिए शास्त्रों का प्रमाण तो उन लोगों के सामने रखा जाता है जिनका शास्त्रों में विश्वास हो जिनका शास्त्रों में विश्वास नहीं उनको तो उनकी तर्कों के द्वारा पराजित करना पड़ेगा। ये जो कला है यद्यपि नैयायिकों ने इस कला का उपयोग ईश्वर की ईश्वरता को ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किया लेकिन तो भी इन नैयायिकों के तर्कों को ही काटा जा सकता है। इसलिए एक तर्क अन्य तर्क के द्वारा कट जाए इसीलिए तर्क के द्वारा केवल किसी भी ठोस निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, उसने किसी तर्क को अपने मत की पुष्टि के लिए रखा, लेकिन भविष्य में कोई उससे भी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, उसने उसके तर्क को काट दिया। इसीलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में उन तर्कों को भी स्वीकार किया जाता है जो शास्त्रानुकूल हो। वेद पुराण इत्यादि शास्त्रों का जो कथन है, उस कथन को समय तक पहुंचाने के लिए जो तर्क किए जाते हैं, उन तर्कों को ही स्वीकार किया जाता है, शिष्ट तर्कों को नहीं। इसलिए वेदांत का कहना है कि जो ब्रह्म है, ईश्वर की जो सत्ता है, वो तर्क के आधार पर खड़ी नहीं रह सकती। तर्क अप्रतिष्ठान। और इस प्रकार से कहा गया कि अचिंत्य खलु निर्भावः नतांस तर्केण योजये प्रकृतिभ्यः परं यच्चतत् अचिंत्यस्य लक्षणम्। लेकिन अचिंत्य की परिभाषा क्या है? अचिंत्य शब्द की अचिंत्य कहेंगे किसको? अचिंत्य अर्थात जिसको प्राकृत मन, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा, प्राकृत बुद्धि के द्वारा जो नहीं जाना समझा सकता, जो अगम्य हो, जो अविद्य हो, जो अगोचर हो, जिसकी जिसको नहीं जाना जा सकता, प्राकृत मन बुद्धि अंतःकरण के द्वारा, वो अचिंत्य है। लेकिन अचिंत्य कहेंगे किसको? जो प्रकृति से परे हो, माया से परे हो, माई के जो सप्त मरज तम नाम के तीन गुण हैं, इन तीन गुणों से जो परे हो, उनको ही अचिंत्य कहेंगे। प्रकृति यह परम या चतर अचिंत्यस्य लक्षण। और इसीलिए यहां पर श्रीमद् भागवत को भी चैतन्य भागवत में महाप्रभु जी कह रहे हैं, महाचिंत्य भागवत सर्वशास्त्रे गाल इहाना बुझिए विज्ञातम प्रतिष्ठा। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये महान अचिंत्य है। श्री कृष्ण श्रीमती वृषभानुनंदिनी जब प्रकट होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो पराजित अचिंत्य है। जब वे श्री कृष्ण अपने समस्त परिकरों के साथ प्रकट लीला में इस पृथ्वी पर अपनी लीला को, अपने रूप को और अपने ध्यान को अभिव्यक्त करते हुए जब कुछ वर्ष पर्यंत लीला को संपन्न करते हैं, अभिनय को संपन्न करते हैं, तो उनकी लीला को अचिंत्य माना गया। लेकिन जो श्रीमद् भागवत है वह महाअचिंत्य है। अचिंत्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, महाअचिंत्य का प्रयोग किया। क्योंकि जब श्री कृष्ण श्री वृषभानुनंदिनी इत्यादि अपने नित्य लीला के नित्य सिद्ध परिकरों के साथ जब इस जगती तल पर अवतीर्ण होते हैं, किंवा प्रादुर्भूत किंवा अभिव्यक्त होते हैं, उस समय उन वृषभानुनंदिनी और श्री कृष्ण की समस्त पार्षदों को तो जो असुर लोग हैं, जो अवैध रूप से नंद के व्रज में प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण का विनाश करने के लिए, प्रातिकूल्य वही इच्छा को लेकर तंस के द्वारा प्रेषित होकर वही भाव से अनुप्राणित होकर शत्रु भाव से, विभु भाव से, अरि भाव से उज्जीवित होकर उन शत्रुओं के द्वारा, उन असुरों के द्वारा, उन दैत्यों के द्वारा भी तो श्री कृष्ण और उनके जो श्री नंद यशोदा, श्री राधा कनिका विशाखा, बलदेव इत्यादि जो पार्षद है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया जाता है। जब अरिष्टासुर आया ब्रज में, अरिष्ट ग्राम में, जिसका वर्तमान जिसकी वर्तमान संज्ञा है राधा कुंड, अरिष्ट ग्राम में जब अरिष्टासुर आया, तब उसने कृष्ण का दर्शन केवल कृष्ण का ही किया हो ऐसा नहीं, समस्त जो अन्य परिकर पार्षद थे उसका भी तो दर्शन किया, समस्त ब्रजानुनाओं का, ब्रज सुंदरियों का भी उसने दर्शन किया। जब पुत्र आई तो उसने भी भगवान के जो नंद यशोदा इत्यादि अंतरंग वात्सल्य भाव के परिकर है उनका दर्शन किया। जब केशी और प्रणवासुर इत्यादि अनेक अघासुर वकासुर इत्यादि अनेक दैत्य आए, दादी इत्यादि, तो उन्होंने भी भगवान की सख्य रस के जो परिकर है, श्रीराम सुमन मधुमंगल बलराम इत्यादि का दर्शन किया। तो दैत्यों को भगवान की लीला के जो परिकर है, उन परिकरों का तथा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त है। ये अलग बात है कि वे दैत्य भगवान से प्रेमा भक्ति मिल जुड़ पाए उस दर्शन के उपरांत भी, जब तक उनके नेत्र प्रेम की अंजन से विभूषित न हो, प्रेमांजन छोड़ी भक्ति विलोचन है, ये अलग बात है। लेकिन उनको दर्शन तो कम से कम प्राप्त हुआ। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है कि जो महाअचिंत्य है, भगवान के लिए अचिंत्य है, लेकिन यह महाअचिंत्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में तब तक श्री राधा ललिता विशाखा इत्यादि परिकरों के भाव की तो बात किया, उनके नाम तक तो कोई नहीं जान पाएगा। यदि हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के श्री जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल जैसे आचार्य उन श्लोकों के ऊपर टीका करके उन रहस्यों का उद्घाटन न करें और ये न दिखाएं कि किस श्लोक में किस गोपी का नाम मौजूद है, तब तक ये पता नहीं लग सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत महाचिंत्य है। वहां तो दैत्य में प्रवेश करके प्रत्यक्ष रूप का दर्शन कर लेते हैं भगवान और उनके परिकरों का, लेकिन यहां पर श्रीमद् भागवत में जब तक आचार्यों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त जो जीव गोस्वामी और विश्वनाथ जैसे आचार्य हैं और सनातन गोस्वामी जैसे जो आचार्य हैं जिन्होंने बृहद वैष्णव तोषणी लघु तोषणी क्रम संदर्भ बलदेव जी ने वैष्णवानंदिनी और विश्वनाथ जी ने सारा कृष्णी जैसी टीकाओं को लिखा, उनकी टीकाओं के बगैर यहां भगवान के परिकरों और भगवान के रूप के दर्शन की तो बात बोल रहे, उनका नाम तक नहीं जीव भूल पाएगा भागवत के श्लोकों में कि कहां पर राजा जी का नाम गुप्त रूप से लिखा गया है, कहां पर अन्य गोपियों का और अन्य परिकरों का नाम गुप्त रूप से लिखा गया है। इसलिए भागवत महाचिंत्य है। अनुम भगवान हरिश्वर है यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यत्र है। इस श्लोक में जो अनाराधितो, इसी में राधा नाम को हमारे विश्वनाथ जीव गोस्वामी ने गुप्त रूप से छिपा हुआ बताया, इसको कौन जान सकता है। और वहां तो असुर प्रत्यक्ष दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, नाम जानने की तो बात करें दूर रहे रूप का दर्शन कर लेते हैं, भागवत में नाम को भी नहीं जाना जा सकता आचार्यों की कृपा के बगैर। इसीलिए भागवत महाचिंत्य है। महाप्रभु की वाणी कदापि निरंतर नहीं सार्थक है, और उन्होंने जो महाचिंत्य शब्द का प्रयोग किया है समुची नहीं है। महाचिंत्य भागवत सर्वशास्त्रीकार इहाना बुझिए विद्यात्मक प्रतिष्ठा है। ये श्रीमद् भागवत किसी लौकिक जो 64 कलाएं हैं उन लौकिक चतुष्टी कला अर्थात जो 64 विद्याएं हैं उनका अध्ययन उनका उपार्जन करने से भी लौकिक सरस्वती की कृपा से प्राप्त होने वाली जो 64 प्रकार की लौकिक कलाएं अथवा लौकिक विद्याएं हैं उन लौकिक विद्याओं की प्राप्ति के पश्चात भी भागवत को कोई नहीं जान सकता। जो षड वेदांग है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इत्यादि और जो चार वेद हैं साम यजुर ऋग और अथर्व और जो ब्रह्मसूत्र हैं अष्टोत्तर शत श्रुतियां उपनिषद हैं अष्टादश पुराण है महाभारत रामायण पंचरात्र आगम निगम श्रुति स्मृति इत्यादि जो ग्रंथ हैं उन समस्त के अध्ययन के द्वारा भी भागवत को नहीं जाना जा सकता। लौकिक विद्या के द्वारा भागवत अगम्य है। यदि कहो कि लौकिक तप के द्वारा तो लौकिक तप के द्वारा भी भागवत अगम्य है। और यदि कहो कि मेरी संसार में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, मैं प्रतिष्ठित विद्वान हूं, मैं दिग्विजयी हूं और सर्वतंत्र स्वतंत्रता इस उपाधि से विभूषित हूं, अर्थात मेरे ऊपर किसी शास्त्र का अनुशासन नहीं चल सकता क्योंकि मैं शास्त्र की परिभाषा को एक क्षण में बदल सकता हूं अपनी बुद्धि के द्वारा, सर्वतंत्र स्वतंत्रता इस उपाधि से भी यदि मैं विभूषित हूं लेकिन मैं भागवत को नहीं समझ पाऊंगा लौकिक प्रतिष्ठा तप और विद्या के द्वारा। तत्पश्चात महाप्रभु जी ने कहा, क्योंकि इस श्लोक का यही तो मुख्य बात तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लौकिक वृत्ति के द्वारा अपने स्वयं के बल के ऊपर कदापि इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसीलिए कठोपनिषद में भी मंत्र आया नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। इस आत्मा को इस परमात्मा को यहां पर आत्मा शब्द परमात्मा के लिए आया है ना कि जीवात्मा के लिए। इस परमात्मा का जो स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह है भगवान गोविंद का, इनके विग्रह का तब तक साक्षात्कार प्रत्यक्षानुभूति अपरोक्षानुभूति नहीं हो सकती कि जब तक ये परमात्मा ये भगवान कृष्ण स्वयं अपनी इच्छा से कृपा करके उस भक्त उस साधक के समक्ष अपने रूप को प्रकट न करे, अपने शरीर को प्रकट न करे, अपने साकार तनु वपु काया देह को प्रकट न करे। इसीलिए कहा गया कि विग्रहोते तनु स्वाम, अपने स्व तनु को अपने स्व सच्चिदानंद शरीर को विग्रह को जब तक प्रकाश भगवान नहीं लाना चाहते, जब तक भक्त के प्रति उसको नहीं दिखाना चाहते, तब तक वह भक्त उस भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक भगवान स्वयं जिस प्रकार से कोई स्त्री कोई राजकन्या स्वयं वर ने अपनी अभिलाषा के अनुसार अनेक सारे वरों में से किसी एक वर का चयन करती है, उसी प्रकार से जब तक भगवान अपनी इच्छा से किसी जीव का वरण नहीं करते अपने साक्षात्कार के लिए तब तक जीव भगवान का साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकता। विवृणुते विवृणुते का अर्थ है जब तक भगवान स्वयं मरण नहीं करते। As long as he does not personally select or choose a person cannot realize. इसलिए नायक आत्मा प्रवचन में लगते हो। ये जो परमात्मा है ये जब प्रवचन के द्वारा लग्य है अनेक सारे अलंकारों से शास्त्र ज्ञान से अर्जित जो प्रवचन है अनेक सारे उपमाओं के द्वारा अनुप्रास इत्यादि अलंकारों के द्वारा अलंकृत मंडित जो प्रवचन है अथवा प्रकृष्ट रूपेण जो वचन है प्रवचन इति प्रकृष्ट रूपेण वचनम उन प्रकृष्ट वचनों के द्वारा भी उन अनेक सारे सहस्रों प्रवचनों को देने से भी भगवान को नहीं समझा जा सकता। न मेधया अपनी मेधा तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा भी भगवान को नहीं समझा जा सकता। न कहना श्रुतेन अनेक लोगों से सुनने पर भी उसको नहीं समझा जा सकता। लेकिन जब तक वो किसी को वर्णन नहीं करे तब तक उनको नहीं समझा जा सकता। तो प्रश्न उठता है कि फिर हम भगवान के विषय में गुणानुवाद कीर्तन प्रवचन क्यों करते हैं उनके विषय में महाभागवतों के संग में क्यों बैठते हैं। तो फिर भगवान ने यह भी कहा है भागवत में श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव ने देवहूति के प्रति यह भी कहा कि सदाम प्रसंगान वीर संविदो भगवती हृदय रसायन कथा तज्जोषणादाशोपवर्गवर्धमनि श्रद्धारते भक्तिरनुक्रमिष्यते। मेरे प्रेमी भक्तों के संग में ही क्रमशः इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने पर मैं उस भक्ति हृदय में अवरुद्ध हो जाता हूं। कृति अवरुद्यते सद्य कृति भी तत्क्षणात् धर्म प्रोजित कर और तत्पश्चात जो मेरी प्रेमा भक्ति है वह भी कभी प्राप्त होगी जब मेरे प्रेमी भक्तों के संग में भागवत का श्रवण अवकीर्ण किया जाए। विक्रीडितं ब्रजवधु वेदं च विष्णुं श्रद्धां विदो अनुश्रुयात् अथ वर्णयेद्यः रासलीला के। इसलिए जब तक भगवान की शुद्ध भक्तों के संग में श्रवण और कीर्तन नहीं किया जाता तब तक इस श्रीमद् भागवत के वास्तविक रहस्य का जो बोध है वह हमारे हृदय को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए उन प्रवचनों के द्वारा उस परमात्मा को नहीं समझा जा सकता जो प्रवचन अभक्तों के द्वारा जो केवल अपनी बुद्धि और तर्क के ऊपर आधारित होकर भगवान के स्वरूप की चर्चा करते हैं भगवान की लीला तथा नाम रूप गुण की चर्चा करते हैं शास्त्रों के आधार को छोड़कर अपनी बुद्धि के अनुसार जो चर्चा करते हैं हरि कथा की उन व्यक्तियों के प्रवचन से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। उन व्यक्तियों के द्वारा सुनने पर भगवान प्राप्त नहीं हो सकते और उन व्यक्तियों की बुद्धि से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते जो केवल जिनकी बुद्धि शास्त्रों के आधार पर नहीं चल रही है मनमानी से स्वेच्छा का विस्तार से चल रही है। ये निष्कर्ष निकलता है क्योंकि शास्त्रों में दो विरोधाभासी वाक्य है। एक वाक्य तो कह रहा है कि न मेधया न बहुना श्रुते प्रवचन करने से सुनने से बुद्धि से प्राप्त नहीं होंगे और दूसरा वाक्य कह रहा है कि भक्तों के संग में उनके प्रवचन से उनके मुख से निश्चित हरि कथा का श्रवण करके भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि अभक्तों के प्रवचन से अभक्तों के संग में और तार्किक बुद्धि के द्वारा जो शास्त्र प्रतिकूल बुद्धि है उसके द्वारा भगवान अभक्त है। तो यहां पर कहा गया कि भागवत बुझी हेत जा अच्छे ज्ञान सेना जाने करु भागवते तमाम। जो व्यक्ति यह समझ गया है अथवा जो व्यक्ति यह मानता है कि मैं भागवत को समझ गया जिसकी ऐसी मान्यता है वह व्यक्ति वास्तव में भागवत को जान भी नहीं सका। क्यों? क्योंकि भागवत अनंत है विभु है और सर्वाश्रय। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं भागवत अनंत है इसके एक एक शब्द में अनंत 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 अर्थ सन्निहित छिपे पड़े हैं। यद्यपि अनेक अनेक आचार्यों ने इस भागवत के प्रति शब्द प्रति श्लोक के ऊपर टीका लिखी लेकिन तो भी आज की तारीख में ही भागवत के अर्थ अनंत है। अनंत अर्थों में से केवल कुछ अर्थों को ही जो आचार्य हैं वो प्रकाशित कर पा रहे हैं। विभू है भागवत सर्वव्यापी है और अनंत है इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मैंने भागवत को संपूर्ण रूप से जान लिया उस व्यक्ति ने वास्तव में भागवत को जाना ही नहीं। भागवते अचिंत्य ईश्वर बुद्धि जान से जानिए भागवत अर्थ भक्ति सार। और अब उस प्रणाली को बता रहे हैं कि जिसके द्वारा भागवत को समझा जाए जिसके भीतर भागवत रूपी शास्त्र के प्रति सबसे पहले अचिंत्य बुद्धि है और दूसरी ईश्वर बुद्धि है उसी व्यक्ति के द्वारा भागवत के अर्थ को जाना जा सकता है। और भागवत का अर्थ क्या है? भक्ति ही सार है, यह भागवत का निष्कर्ष है, निचोड़ है, भागवत का अंतिम निर्णय, तात्पर्य, अर्थ, भागवत का अंतिम समन्वय है। श्रीमद् भागवत का अंतिम अर्थ यह है, अंतिम तात्पर्य यह है कि भगवत भक्ति ही एकमात्र साध्य और साधन दोनों है। साधन भक्ति के रूप में तो भगवत भक्ति साधन है, और जो साध्य भक्ति है यानी कि प्रेमा भक्ति, उसके रूप में भगवत भक्ति वही श्रवण कीर्तन आदि जो नवदा भक्ति है वह साध्य भी है। ये जो भगवत भक्ति ही साध्य और साधन है, और श्री कृष्ण ही एकमात्र जीवों के स्वामी है और जीव उनके दास है, ये जो संबंध है, साधन भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है और प्रेमा भक्ति ही एकमात्र प्रयोजन है, यह संबंध अभिधेय प्रयोजनात्मक जो ज्ञान है, यही श्रीमद् भागवत का अंतिम निष्कर्ष है। लेकिन यह तब तक प्राप्त नहीं हो सकता यह संबंध अभिधेय प्रयोजनात्मक ज्ञान, जब तक कि भागवत के प्रति जीव की अचिंत्य बुद्धि और ईश्वर बुद्धि, ये दो बुद्धियां न हो। अचिंत्य बुद्धि का तात्पर्य कि श्रीमद् भागवत अनंत अर्थों से युक्त है। केवल आचार्यों ने दिए हैं उतने ही अर्थ नहीं है, भागवत के अनंत अर्थ है। आचार्यों ने केवल मुख्य मुख्य अर्थ लिए हैं, इस प्रकार से इसकी मान्यता हो। और दूसरी ईश्वर बुद्धि, श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष ईश्वर है। ईश्वर का तात्पर्य नियंत्रण करने वाला, ईश्वर कहते हैं नियंता को, जो नियंत्रण करने वाला हो, जिसके इच्छा के अनुसार कोई कार्य होता हो वह ईश्वर है, जो कंट्रोलर। तात्पर्य कि जिस प्रकार से जो राजा होता है वह किसी राज्य का ईश्वर माना गया, नरेंद्र अथवा नरेश्वर अथवा नृपति, राजा के अनेक सारे पर्यायवाची नाम संस्कृत। राजा को जिस प्रकार से अपने राज्य का और राज्य अंतर्वर्ती जो प्रजा है उस प्रजा का ईश्वर माना गया है, क्योंकि प्रजा और राज्य दोनों ही राजा के अनुसार ही चलते हैं, उसके प्रतिकूल नहीं चल सकते, उसी प्रकार से यहां पर भी। और जिस प्रकार से राजा को यदि कोई व्यक्ति मिलना चाहे, सामान्य व्यक्ति को तो कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति की इच्छा के बगैर भी मिल सकता है। सामान्य व्यक्ति जो पथ में भ्रमण करते हुए जा रहा है उसको कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति की इच्छा के बगैर भी उसको मिल सकता है, लेकिन जो राजा है, जो राज्य का ईश्वर है, उस राजा को उसकी इच्छा के बगैर उसको कोई नहीं मिल सकता, उसकी अनुमति के बगैर। उसी प्रकार से जो भागवत है वह भी ईश्वर है। भागवत की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक भागवत अपने गूढ़ रहस्यों का, अपने गूढ़ मर्मार्थ का प्रकाशन नहीं करेगा। चाहे वो व्यक्ति फिर कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, कितना भी लौकिक तर्क बुद्धि और लौकिक मन के ऊपर क्यों न पकड़ रहा हो, भागवत ईश्वर है। He has reserved the right of disclosing itself before any aspirant or practitioner। श्रीमद् भागवत के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी साधक या किसी भक्त के प्रति अपने आप को व्यक्त करे या न करे, क्योंकि श्रीमद् भागवत ईश्वर है। जैसे राजा को उसकी इच्छा के बगैर नहीं मिल सकता, इस भागवत रूप ईश्वर को भी उस भागवत की इच्छा कृपा के बगैर नहीं जान सकता। इसीलिए जिसकी अचिंत्य और ईश्वर बुद्धि है भागवत में, वही भागवत को जान सकता है। तत्पश्चात कौन नहीं जान पाएगा, उसका उदाहरण भी चैतन्य भागवत देता है। जेवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब तहारा ना जाने सब ग्रंथ अनुभव। नवद्वीप और उस समय तत्कालीन जो पंच शताब्दी पूर्व का जो बंगाल था, जो गौड़ देश था, उसमें जितने भी जो ब्राह्मण थे, वारेंद्र श्रेणी के हो चाहे राधिक श्रेणी के हो, क्योंकि बंग देश के ब्राह्मण दो भागों में विभक्त है, तो जितने भी ब्राह्मण थे, चाहे वो भट्टाचार्य हो, चक्रवर्ती हो, मिश्र हो, ये समस्त जो ब्राह्मण थे बंग देश के, उनके भी ये कहा गया है कि ये समस्त शाक्त थे, तामसिक देवी देवताओं की काली है, और इसी प्रकार से शाकम भरी देवी है, इसी प्रकार से जो अनेक प्रकार की जो तामसिक देवी देवता है, घोर रूप है, उनकी उपासना में निरत थे, और वो समस्त कर्म ज्ञान योग इत्यादि मार्गों को श्रेष्ठ मानने वाले थे, उनके हृदय में भक्ति के लिए आदर नहीं था। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि ये बंग देश के जितने भी भट्टाचार्य है, चक्रवर्ती है, मिश्र है, ये सब केवल तोते की तरह ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं, चाहे वो गीता भागवत के ऊपर भी व्याख्यान क्यों न करें, अपने विद्यार्थियों के समक्ष तोते की भांति, शुक की भांति उनका उच्चारण है, उनको जिस प्रकार से शुक जिस वाक्य का उच्चारण कर रहा है उसके मर्मार्थ को नहीं समझ पाता, उसी तरह से जितने भी भट्टाचार्य, मिश्र, चक्रवर्ती आदि है, वे भी भागवत और गीता का जो वास्तविक रहस्य है, भगवत भक्ति, इन शास्त्रों को समझाने पर भी इन शास्त्रों के तात्पर्य को नहीं समझ सकते, ग्रंथ के अनुभव से रहित है। शास्त्र पराया सवे कई कर्म करे, श्रोतार समीप सहित यम पाशे डूबी पड़े। शास्त्र को पढ़ाते तो हैं, लेकिन वे स्वयं और जो उनके श्रोता विद्यार्थी हैं दोनों ही यम के पाश में डूबकर मरते हैं, अर्थात उनका उद्धार नहीं है, क्योंकि वे भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे भगवत भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों को ज्ञान कर्म और योग के प्रतिपादक मानते हैं। भगवान वासुदेव की भक्ति के प्रतिपादक शास्त्रों को शिव, ब्रह्मा, भद्रकाली इत्यादि अन्य देवताओं की भक्ति का प्रतिपादक मान रहे हैं, साकार ब्रह्म की प्रतिपादक शास्त्र को निराकार ब्रह्म का प्रतिपादक मान रहे हैं, इसलिए उनका उद्धार कदापि नहीं है। और तत्पश्चात प्रणाली भी बताई कि किस प्रणाली से भागवत को समझा जाए, जो गर्भयुक्त मदयुक्त तत्कालीन श्री वल्लभ दीक्षित और वर्तमान समय में जगद्गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य अखंड भूमंडलाचार्य वल्लभाचार्य जी के नाम से जो ख्यात हैं, जो कि पुष्टि मार्ग और बल्लारा मार्ग दोनों के आदि संस्थापक आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो समकालीन हैं, यही श्री वल्लभाचार्य जब भगवान की इच्छा से किंचित गर्भयुक्त होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए, उस समय महाप्रभु ने कहा कि श्रीधर स्वामी प्रसादे भागवत जानी, जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करिमानी। श्रीधर स्वामी की तुम अवहेलना कर रहे हो, हे वल्लभ भट्ट, हे वल्लभ दीक्षित, हे वल्लभाचार्य, आप श्रीधर स्वामी जो कि भागवत के सर्वप्रथम व्याख्याकार हैं और जो कि भागवत के ऊपर सर्वाधिक रूप से प्रामाणिक हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हो। इसीलिए जब तक आप श्रीधर स्वामी को जगत गुरु के रूप में नहीं मानेंगे, तब तक आप उनकी कृपा से वंचित रहेंगे और तब तक आप भागवत के वास्तविक मर्म को नहीं जान पाएंगे। श्रीराम गतगर भागवत व्याख्यान अभिमान झाड़ी भज कृष्ण मनवा। श्रीधर स्वामी के अनुगत होकर आप भागवत का व्याख्यान करो और ये अभिमान छोड़कर कि मैं श्रीधर स्वामी से भी अधिक बुद्धिमान हूं और तेजस्वी हूं और शास्त्रवेत्ता हूं और ज्ञानी हूं और विद्यावान हूं, इस अभिमान को छोड़कर आप कृष्ण भगवान का भजन करें। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में जो प्रणाली है उसका उपदेश दिया। और अन्य भी स्थान है चैतन्य चरितामृत और भागवत में जहां पर महाप्रभु ने, क्योंकि यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक ब्राह्मण के प्रति भी महाप्रभु ने कहा है कि किसी भागवत के मुख से ही भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो यहां पर कहा गया जाह भागवत पढ़ वैष्णवे स्थान है एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण है। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला का पांचवा अध्याय। महाप्रभु ने आदेश दिया कि जाओ भागवत को वैष्णव के स्थान में पढ़ो। और कबीराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एकांत आश्रय के बगैर भागवत के रहस्य को कोई व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर हैं रूप सनातन प्रकृति, इन्होंने ही भागवत के किन किन श्लोकों में भगवान की परिकरों की महिमा गुप्त रूप से उल्लेखित उत्कंठित हुई है, इसको ढूंढ ढूंढ कर छानबीन कर जगत में प्रकाशित किया है। इसलिए महाप्रभु और उनके परिकरों की जो चरण कमल है उनके चरण कमल की कृपा के बगैर भागवत को नहीं समझा जा सकता। इसलिए वैष्णव पाश भागवत का अध्ययन, वैष्णव के पाश में ही भागवत का अध्ययन करो। और भागवत भी दो प्रकार के हैं, एक तो व्यक्ति भागवत और दूसरा ग्रंथ भागवत। दुई स्थाने भागवत नाम शुनि मात्र, ग्रंथ भागवत और कृष्ण कृपा पात्र। भागवत का नाम दो स्थानों में आता है, दो स्थानों पर प्रयुक्त होता है, एक तो ग्रंथ भागवत के लिए और दूसरा जो भगवान की कृष्ण की कृपा का जो पात्र हो, वैष्णव हो, उस सात्वत के लिए, उस महान भक्त के लिए भी भागवत शब्द का प्रयोग है। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र और एक भागवत भक्ति रस पात्र। एक तो भागवत शास्त्र है जो महान है और दूसरा भगवान की भक्ति रस का पात्र है। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस तहार हृदय तार प्रेमे भयवश। इन दोनों भागवतों के द्वारा जीव को भगवान की भक्ति का रस मिलेगा, तभी उस जीव के हृदय में प्रेम भक्ति को प्रादुर्भूता हुआ देखकर भगवान उस जीव के वशीभूत हो जाएंगे। यानी कि केवल ग्रंथ भागवत का अध्ययन करें और किसी भगवान के शुद्ध महाभागवत के चरणों का आश्रय न लें, तब तक भगवान की कृपा वास्तविक रूप से नहीं प्राप्त हो सकते। अब यहां पर एक श्लोक आया है जिसका उदाहरण श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भी दिया है श्री रूप गोस्वामी ने। अहम वेदनीशु को वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न चटीकया। भागवत को कौन जानता है और कौन नहीं जानता, इसको इस श्लोक में बताया गया। यह श्लोक स्वयं श्री शंकर महादेव के द्वारा कथित है, उक्त है। शंकर कहते हैं कि अहम वेदनी, मैं श्रीमद् भागवत के संपूर्ण रहस्य को जानता हूं। संपूर्ण रहस्य का तात्पर्य है कि जितना मेरी मति के अनुसार ग्रहण हो सका, मेरी मति जहां तक जा सकती है उतने ही भागवत में जान सका हूं। अर्थात वैसे तो आंशिक रूप ही कहना चाहिए, आंशिक रूप से ही जान पाया हूं मैं श्रीमद् भागवत को, क्योंकि संपूर्ण रूप से, संपूर्ण भी दो प्रकार से हो सकता है, आत्यंतिक संपूर्ण और गौण संपूर्ण। तो आत्यंतिक संपूर्ण रूप से तो स्वयं भगवान संकर्षण, जिनके 1000 मस्तक हैं, 1000 मस्तक हैं, और जो अनादिकाल से श्रीमद् भागवत का व्याख्यान कर रहे हैं, वो भी जब नहीं जान पाए हैं, तो बेचारे उन भगवान संकर्षण की जो अनुवादी, उनके शिष्य, उनके चेले जो शंकर हैं, श्री महादेव है, वो कैसे भागवत को जान पाएंगे संपूर्ण रूप से। इसीलिए भागवत को अपनी मति जहां तक जा सकती है वहां तक भागवत को मैंने जाना है। अहम वेदनी, महादेव कहते हैं कि मैंने श्रीमद् भागवत को जान लिया है। शुको वेत्ति, तथा जो शुकदेव हैं उन्होंने भी श्रीमद् भागवत को ठीक ठीक जाना है। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यास जानते हैं और नहीं जानते हैं, वैकल्पिक वा का प्रयोग किया है। व्यास जानते हैं और नहीं भी जानते हैं। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या चटीकया। एकमात्र भक्ति पूर्ण हृदय से, भक्ति से ओतप्रोत हृदय से ही भागवत को जाना जा सकता है, न अपनी निजी बुद्धि के द्वारा अथवा टीका के द्वारा। यहां टीका का अर्थ उन वैष्णव आचार्यों की टीका नहीं है जिनका हृदय भक्ति से ओतप्रोत था, उन्हें भी टीका से तो भागवत को समझा जाता है। सदान प्रसंगान मनवीर के संवीर हो प्रमाण है शास्त्र का। लेकिन जो केवल अपनी बुद्धि पर अकड़ता, भगवान की कृपा से वंचित होकर जिन्होंने टीका लिखी है भागवत के ऊपर, ऐसे भी अनेक टीकाकार हैं। आदि शंकराचार्य के पश्चात पुण्यारण्य नाम के उनके एक मतावलंबी हुए हैं, सन्यासी, मायावादी सन्यासी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रतिश्लोक के ऊपर निराकार ब्रह्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए, जीव और ब्रह्म के ऐक्य को, अद्वैतवाद को स्थापित करने के लिए, और ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग से भी श्रेष्ठत्व स्थापित करने के लिए, इन तीन प्रयोजनों को लेकर, निंदनीय हे तुच्छ प्रयोजनों को लेकर श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका लिखी, और इस टीका का नामोल्लेख जीव गोस्वामी पाद ने तत्व संदर्भ में किया। और जिस प्रकार से वेदांत ब्रह्म सूत्र के समस्त सत्य अर्थों को सत्य अर्थों को परिवर्तित करके, वेदांत सूत्र का जो सत्य तात्पर्य है, वास्तविक तात्पर्य है, उसको परिवर्तित करके आदि शंकर भगवत पाद ने जैसे मिथ्या तात्पर्य को दिखाया, उसी प्रकार से पुण्यारण्य ने भी, पुण्यारण्य स्वामी ने भी श्रीमद् भागवत के ऊपर मायावादी भाष्य की रचना करके भागवत को ज्ञान प्रधान, निराकार ब्रह्म प्रधान और जीव ब्रह्म ऐक्य प्रधान स्थापित किया। तो इस प्रकार की जो टीकाएं हैं, इस प्रकार की टीकाओं के द्वारा भागवत को नहीं समझा जा सकता, और शास्त्र प्रतिकूल जो बुद्धि है उसके द्वारा भागवत को नहीं समझा जा सकता। व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति वा, यहां पर कहा गया कि व्यास जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि व्यास 30 है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 30 दिन होते हैं, ब्रह्मा जी के एक मास में 30 दिन होते हैं, 63 दिवस, और इन 30 दिनों में से प्रत्येक दिन को कल्प कहा जाता है, और एक कल्प में चतुर्दश 14 मन्वंतर होते हैं, एक मन्वंतर में 71 बार सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि, ये 4 युग आते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो 30 दिन हैं एक महीने के, तीसों ही दिनों में अर्थात तीसों ही कल्पों में एक एक कल्प में एक एक व्यास का प्रादुर्भाव होता है। पुराणों में उल्लेख भी किया गया है कि एक एक कल्प में एक एक व्यास होते हैं। तो वर्तमान जो श्वेत वाराह कल्प है, श्वेत वाराह कल्प नाम का ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, इस श्वेत वाराह कल्प में जो भगवान वेद व्यास प्रकट हुए हैं ये स्वयं नारायण है। अन्य कल्पों में जो वेद व्यास प्रकट होते हैं वे नारायण नहीं होते, इसलिए अन्य कल्पों के वेद व्यासों को कृष्ण द्वैपायन न कह के उनके अलग अलग नाम है। इस कल्प के वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन कहा गया क्योंकि वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। क्योंकि जो शक्ति आवेश अवतार है वो भी दो प्रकार है, जीव शक्ति आवेश एवं भगवत शक्ति आवेश। लघु आत्मकामृत रूप गोस्वामी जी ने स्पष्टीकरण किया, कोई साधारण जीव जो कि तटस्था प्रकृति का अंश है, साधारण जीव जो कि तटस्था प्रकृति का अंश है और जिस प्रकार से सूर्य से अनेक सूर्य रश्मियां किरणें निकलती हैं उसी प्रकार से किरण के समान अनुचित विभुचित नहीं अनुचित इंफिनिटेसिमल जो जीव है जिसके पास अणु स्वतंत्रता है और जो तटस्था शक्ति शक्ति से उत्पन्न है और जो कृष्ण का दास है, इस तटस्था शक्ति से उत्पन्न जो जीव है इस जीव के भीतर जब भगवान अपनी कुछेक शक्तियों का आधान करते हैं जैसे ज्ञान शक्ति हो चाहे शारीरिक बल हो, इस प्रकार से भगवान अपनी कुछेक शक्तियों का आधान किसी साधारण जीव में करते हैं तो उस जीव को जीव शक्त्यावेश अवतार कहा गया। यानी कि है तो वो जीव ही भगवान नहीं, तटस्था प्रकृति तटस्था शक्ति है लेकिन भगवान ने अपनी कुछ एक शक्तियों को उसमें डाल दिया। लेकिन भगवान शक्त्यावेश भगवान स्वयं है लेकिन अपनी कुछ शक्तियों को ही दिखा रहे हैं संसार में। जो लीलावतार होते हैं और जो भगवान शक्त्यावेश होते हैं उसमें यही अंतर होता है कि राम नरसिंह वाराह मत्स्य कूर्म इत्यादि जो लीलावतार है कृष्ण के उन लीलाव वो जो लीलावतार है वे छह ऐश्वर्यों को दिखाते हैं या जो क्षण ऐश्वर्य है ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्य ज्ञान वैराग्य दोश्चैव शरणं भगवती इंद्रा। ये जो षड ऐश्वर्य है सबसे पहले शारीरिक बल यश कीर्ति बुद्धि अर्थात ज्ञान वैराग्य और इस प्रकार से ये जो छह प्रकार के ऐश्वर्य है भगवान में उन छह प्रकार के ऐश्वर्यों को जब भगवान पूर्ण मात्रा में दिखाते हैं तो उन अवतारों को लीलावतार कहा गया। और जब भगवान स्वयं प्रकट होकर किसी जीव के अंदर नहीं स्वयं प्रकट होकर वही भगवान जब स्वयं प्रकट होते हैं लेकिन अपने छह ऐश्वर्यों को दिखाने के बजाय छह में से किसी एक ही ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं जैसे ज्ञान केवल ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं तो उन भगवान के अवतारों को भगवत शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। वो स्वयं भगवान ही है, भगवान से अभिन्न है, जीव नहीं है, स्वयं भगवान है, विष्णु तत्व है लेकिन छह में से किसी एक ऐश्वर्य को एक शक्ति को ही संसार में दिखा रहे हैं प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो इस कल्प के जो वेद व्यास है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास वो भगवत शक्त्यावेश है, स्वयं भगवान है, नारायण है, कृष्ण है जो केवल अपनी एक ज्ञान शक्ति को दिखा रहे हैं। जबकि अन्य कल्पों के जो वेद व्यास है वो जीव है जिनके भीतर भगवान ने अपनी ज्ञान शक्ति को रखा है, वो जीव शक्ति आवेश है। इसीलिए अन्य कल्पों के जो जीव शक्ति आवेश अवतार है जो अन्य कल्पों के जो जीव शक्ति आवेश कोटि के अंतर्गत आने वाले जो वेद व्यास है वो श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकते लेकिन इस कल्प में प्रकट होने वाले जो स्वयं भगवान भगवत शक्ति आवेश जो वेद व्यास है वो स्वयं भगवान होने के कारण जीव नहीं है स्वयं भगवान होने के कारण वो श्रीमद् भागवत को समझ सकते हैं। इसीलिए व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति वा समझ भी सकते हैं और नहीं भी समझ सकते हैं दोनों एक साथ। लेकिन इसका लोग गलत से अर्थ करते हैं और कहते हैं कि वेद व्यास जानते हैं या नहीं जानते हैं इस विषय में मुझे शंका हो रही है, इस प्रकार से गलत अर्थ करते हैं लोग, ये अर्थ ठीक नहीं है। हालांकि इस प्रकार से यदि अर्थ करें तो भी इसका अर्थ यह निकलता है कि जो अन्य 29 वेद व्यास है 29 वेद व्यास वो भागवत को नहीं जान सकते लेकिन जो 30वें वेद व्यास है जो स्वयं भगवत शक्ति आवेश है जीव न होने के कारण वो भागवत के रहस्य को जान पा रहे हैं। इसीलिए तो विष्णु पुराण में स्वयं वेद व्यास के कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के पिता पराशर मुनि ने पिता स्वयं अपने पुत्र की तारीफ प्रशंसा कर रहा है, श्लाघा कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, ऐसा कभी देखा है आजकल? पराशर क्योंकि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन के पिता हैं, वो स्वयं वेद व्यास के जो मित्र हैं, बाल सखा हैं, मैत्रेय मुनि, उनके प्रति वेद व्यास की महिमा का बखान उनके पिता पराशर मुनि विष्णु पुराण में काम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि वो मैत्रेय कृष्ण द्वैपायन व्यासम विद्धि नारायणम प्रभु। हे मैत्रेय, तुम जान लो, तुम इस ब्रह्मदेवी में ना कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास और तुम दोनों मेरे शिष्य हो, बाल्यकाल के मित्र हो, सहपाठी हो, इसलिए तुम कदाचित सखा भाव में रहने के कारण उनकी अवज्ञा मत करना। वो और तुम दोनों में बड़ा अंतर है, उसमें और मुझमें भी बड़ा अंतर है, क्योंकि हम दोनों तो साधारण जीव है, लेकिन मेरा जो पुत्र कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है साक्षात प्रभु नारायण है। कृष्ण द्वैपायन व्यासम विद्धि नारायण प्रभु, इसको तुम साक्षात भगवान नारायण ही जानो। इसीलिए इस वेद व्यास के लिए वेत्ति ये कहा गया है, वो जानते हैं भागवत को, लेकिन जो जीव कोटि के वेद व्यास है वो न वेत्ति, वो भागवत के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कहा गया है। क्योंकि श्रीमद् भागवत जीव कोटि के वेद व्यास जब प्रकट होते हैं उन कल्पों में श्रीमद् भागवत प्रकट नहीं होता। जीव गोस्वामी ने स्पष्टीकरण किया है इसका भागवत संदर्भ में, जिस कल्प में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास प्रकट होते हैं उसी कल्प में भागवत प्रकट होता है। इसीलिए जब उन वेद व्यासों के समय में, उनके काल में, उनके टाइम पीरियड में जब भागवत प्रकट ही नहीं होता, तब भागवत को समझने का प्रश्न ही कहां रहा उन वेद व्यासों के पक्ष में। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से भागवत को नहीं जानते हैं, क्योंकि भागवत उसी कल्प में प्रकट होता है जिस कल्प में स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट होते हैं, और जिस कल में श्री चैतन्य महाप्रभु, जिस मरण कल में श्री चैतन्य महाप्रभु, जिस युग में चैतन्य महाप्रभु और श्री श्याम सुंदर प्रकट होते हैं, उसी युग के जो वेद व्यास हैं वो भागवत को भी प्रकट करते हैं। और भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण को प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान ही वेद व्यास के रूप में आते हैं। यह काम कोई साधारण जीव नहीं कर सकता, इसीलिए हमें यह जान लेना चाहिए निष्कर्ष रूप में, क्योंकि समय हो गया है, जान लेना चाहिए निष्कर्ष रूप में। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में इसी बात को बार बार दोहराया है कि अपनी बुद्धि के बल के ऊपर भागवत को नहीं जानो, आचार्य के अनुगामी होकर और ऐसे तर्क के द्वारा जो कि शास्त्रों के अनुकूल हो इसके द्वारा ही, और अंत में भगवान की जब तक कृपा नहीं हो तब तक भगवान को नहीं जाना जा सकता। यह निष्कर्ष है, यह सार है। हरे कृष्ण। कोई भी प्रश्न हो तो अब व्यक्तिगत रूप से पूछने की कृपा करें, क्योंकि अभी यहां प्रसाद का समय हो गया है। हरे कृष्ण।